सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीसीबी का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, और पीसीबी काफ़ी मेरे साथ काइंड रही है पिछले 4-5 साल से। जो पिछली भी जो हायरार्की थी उन्होंने भी मुझे मैनेजर बनाया पाकिस्तान 19 का, फिर उसके बाद क्रिकेट कमेटी में भी उन्होंने मौका दिया, और अब इन्होंने ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, जो होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि अपना जो भी तजुर्बा है, जो भी मैं समझता हूँ, उसके तहत इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूं। इसके अलावा मैं यकीनन जो हमारे जाने वाले दोनों डायरेक्टर्स हैं, जो कि मेरे बड़े सीनियर और हमेशा से मेरे हम मुझे गाइड करते रहे हैं, मुदस्सर नजर और हारून रशीद, उनका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अरसा पीसीबी के साथ काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और जो भी चीज़ें हैं उनको मैं यकीनन उनकी जो लेगेसी है उसको आगे लेके चलने की कोशिश करूँगा। अब मेरे पास ये जो मर्जर हुआ है, बड़ा एक्साइटिंग टाइम है जो मर्जर हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट और हाई परफॉर्मेंस का, और मुझे बहुत खुशी है कि ये मुझे मौका मिला कि ऐसे मौके पे मैं काम करूं जहां पे ये डोमेस्टिक और हाई परफॉर्मेंस मर्ज हो रही है, क्योंकि मैं ये हमेशा से समझता हूं कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और हाई परफॉर्मेंस है उसका काम एक ही है कि आप टॉप क्लास प्लेयर डेवलप करना। लेकिन क्योंकि ये अरसे से अलहदा अलहदा काम कर रहे थे और इसकी वजह से बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि बहुत सारे प्लेयर जो है इस दरमियान मिस हो जाते थे, और कुछ जो एनसीए थी प्रीवियसली, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो जाएगा, वो किसी पे डेवलपमेंट का काम कर रही है लेकिन उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में मौका नहीं मिल रहा। तो मेरे ख्याल से ये मर्जर होने से, क्योंकि हम सब एक एक लाइन पर आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें प्लेयर्स का बड़ा फायदा होगा, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि दोनों डिपार्टमेंट का काम एक ही था कि टॉप क्लास प्लेयर को डेवलप करना। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा बेहतरीन मर्जर है और इससे हमें बहुत आगे फायदा होगा प्लेयर डेवलपमेंट। जो डोमेस्टिक क्रिकेट और हाई परफॉर्मेंस दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं देखूंगा, लुक आफ्टर करूंगा। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें एक हमेशा से ये कॉमन सी बात है कि हमेशा ये कहा जाता है और ये इम्पोर्टेंट होता है, और हर दुनिया का क्रिकेट बोर्ड यही कोशिश करता है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरमियान जो है वो गैप कम से कम हो, ताकि प्लेयर की जो ट्रांजिशन है फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल वो बड़ी आसानी से हो जाए। अच्छा, अब हमको ये इसमें जो कुछ मेरी नज़र में जो मेरी प्रायोरिटीज़ होंगी वो डेफिनेटली यही होंगी कि अगर आपने ये स्टैंडर्ड को उसके गैप को क्लोज करना है तो आपको यकीनन उसमें चीज़ें आ जाती हैं। एक तो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स वो इम्प्रूव होगा, जो कि जाहिर बात है वो हाई परफॉर्मेंस के थ्रू होगा, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो चीज़ है वो क्वालिटी ऑफ अंपायरिंग एंड जो रेफरीज हैं उसको इम्प्रूव करना होगा। तीसरी जो मेरे ख्याल से चीज़ है वो है आउटफील्ड और पिचेस की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी गेम के लिए। जो उसकी पिच होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चार चीज़ें जो है ये मेरी प्रायोरिटी होंगी कि मैं इसको जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके करीब करीब लेके आऊँ ताकि वो चीज़ों को मीट कर सके। अच्छा, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें यकीनन प्लेयर्स की जो फाइनेंशियल्स हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उसी स्टैंडर्ड पे करना चाहते हैं तो यकीनन हम प्लेयर की जो फाइनेंशियल्स है, मेरा एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा यकीनन इस पे कि मैं जो प्लेयर सैलरी इस वक्त है, यकीनन आपको इस साल भी इम्प्रूव नज़र आएंगी जो पिछले साल से थी, लेकिन एक हम इसको लॉन्ग टर्म प्लान मेरा इरादा है बनाने का कि किस तरीके से हम स्पॉन्सरशिप लेकर आएँ ज़्यादा से ज़्यादा, किस तरीके से ब्रॉडकास्टर अच्छे से अच्छे ब्रॉडकास्टर आएँ, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फैंस की इन्वॉल्वमेंट। अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हमने फैंस को कभी भी वो अहमियत नहीं दी जब भी हमने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट डिज़ाइन किए, तो मेरी ये प्रायोरिटी होगी कि मैं जो फैंस हैं क्रिकेट के, ताकि लोग ग्राउंड में आना शुरू हो, तो हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से फैंस को ग्राउंड के अंदर लेकर आना है। तो इसका हम एक यकीनन एक जामे प्लान बनाएंगे जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि अभी तो कल ही मैंने ये जिम्मेदारी ली है, तो बहुत सारी चीज़ों पे मैं पीछे काम कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही वक्त आएगा उस पर आपसे ज़रूर आपसे मैं शेयर करूंगा। अगर हाई परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका जो है एक डेवलपमेंट प्लान जो कि कंसिस्टेंट हो और रॉबस्ट हो, मॉडर्न जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी और जो सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर हो प्लेयर्स की डेवलपमेंट में, और उसके लिए यकीनन आपको कोचेस चाहिए इस तरह के। तो जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं कह रहा था, एक तो एक बेहतरीन प्लान बनाना कि किस तरीके से एक हाई क्वालिटी इंटरनेशनल प्लेयर डेवलप हो सकता है, और उसके लिए आपको यकीनन कोचेस की ज़रूरत होगी। तो जो कोचेस हैं उनका जो अब कोचिंग कोर्सेज हैं, उनकी जो कोच एजुकेशन है, उस पर हमारा बहुत ज्यादा जो है एम्फेसाइज हम करेंगे, और उसको हम जो उसके कोचिंग जो कोर्सेज हैं पहले भी लोगों ने किए हैं, क्योंकि वो अब जाहिर बात है काफ़ी अरसे से हमारे जो कोचेज हैं उन्होंने वो कोर्सेज किए हुए हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें आ गई जो हम यकीनन उसके मॉड्यूल्स बना के उनको अपडेट और अपग्रेड करेंगे सारे कोचेज को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई एक ऐसा प्लान जो एक प्ले डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, तो उसके लिए आपको हाई क्वालिटी कोचेस की ज़रूरत होती है। तो कोच एजुकेशन पे जैसे मैंने कहा कि हमारा बहुत ज़्यादा हम एम्फेसाइज करेंगे और उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हम एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने का मेरा इरादा है कि वो प्लेयर जो है ट्रैकिंग सिस्टम डेवलपमेंट, जो उसकी परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि लोग प्लेयर्स ने पाकिस्तान 19 से खेला, पाकिस्तान 16 से खेला और फिर वो मिस हो गए आगे जाके। तो हम एक ट्रैकिंग सिस्टम, एक अंडर 13 से जब कोई प्लेयर रीजन में डेवलप सेलेक्ट होगा और वहाँ से उसकी जो है हम स्क्रीनिंग करके और उसकी जो है प्रोफाइलिंग करके वहाँ से उसको ट्रैक करेंगे उसकी परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को, और वो जब तक वो प्रोफेशनल बनेगा वहाँ तक उसका रिकॉर्ड जिस कोच के पास जाएगा, जिस जिस प्लान में वो जाएगा, जिस टीम में जाएगा, जो परफॉर्मेंसेज उसकी आएंगी, उसका डिसिप्लिन रिकॉर्ड, उसका एज का रिकॉर्ड, उसका फिजिकल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें उस ट्रैकिंग सिस्टम में होंगी, जो कि जो हमारा जो टैलेंट ज़ाया हो जाता है मेरे ख्याल से वो उसमें मदद देगा, टैलेंट ना जो है उसको मेरे ख्याल से बचाने के, ज़ाया होने से बचाने के। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो मेरिट बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसमें हमेशा से हम मेरिट पे बात करते रहें, और मेरा ये इरादा है कि हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स बनाएंगे और वो इंट्रोड्यूस कराएंगे ताकि हर बच्चे को इक्वल चांस मिले, और जो टैलेंट टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करके जब आप किसी भी बच्चे को सिलेक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से मेरिट के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है और मिनिमाइज हो जाती हैं दूसरी चीज़ें उसमें, और मेरिट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें होगी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से ग्राउंड रूट से हम शुरू करेंगे और हाई परफॉर्मेंस तक हमको ये चीज़ें सारी जो है इम्प्लीमेंट करनी है। और इन सब से इम्पोर्टेंट, इन सब चीज़ों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा से है कि हम रिव्यू, इसके बाद क्वार्टरली रिव्यू चीज़ों का करना और अकाउंटेबिलिटी, जो मेरे ख्याल से हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम बहुत अच्छी चीज़ बना लेते हैं लेकिन अक्सर हम उसकी रिव्यू नहीं करते, जो है रेगुलर और पीरियोडिकली हम उसका रिव्यू नहीं करते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारी कोशिश होगी कि इस पे हम बहुत काम करें, और अकाउंटेबिलिटी जो भी आपको, ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये इसमें कोचेस की भी परफॉर्मेंस ट्रैक होगी, तो अकाउंटेबिलिटी का जो इशू रहता है वो हमेशा वो जो है इससे वो जो ये जो हम जो ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे उससे इसमें भी हमें बहुत फायदा होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी अभी, क्योंकि और जैसे जैसे आगे हमारे प्लान्स आते जाएंगे वो आपसे मैं शेयर करूंगा और कांटेक्ट में रहेंगे आपसे और आपसे शेयर करते रहेंगे जो जैसे जैसे इन चीज़ों में प्रोग्रेस हो।
थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। अब वील स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चन। सबसे पहले रिक्वेस्ट मैं करूंगा खालिद भाई से, खालिद एच खान, और उसके बाद माजिद भट्टी साहब। तो खालिद भाई सबसे पहले आप, फिर माजिद भाई।
नदीम, जैसे आपने बड़ी कॉम्प्रेंसिव सब चीज़ों को क्लेम किया कि जो आपके मतलब जायम है, दे लुक वेरी इम्प्रेसिव। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का जो जब बात आती है, पहले भी इस तरह की चीज़ें होती रही हैं दूसरे लेवल पर, लेकिन जब भी ये इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो हमेशा कहीं ना कहीं उसमें लूप्स होल नज़र आते हैं, फिर वो चीज़ वापस मतलब कबर्ड की तरफ रख दी जाती है। तो इसको इस दफा ऐसे क्या चीज़ डिफरेंट आप करेंगे कि जिससे ये चीज़ एक रियलिटी बन के सामने आए?
देखिए खालिद भाई, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप कोई आप प्लान बनाते हैं, तो आप उसका एक पीरियोडिकली रिव्यू करते रहें ताकि आपको पता हो कि आपकी प्रोग्रेस किधर है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें अकाउंटेबिलिटी। आप उसको जब भी आप पीरियडली एक पीरियड सेट करके आप उसको रिव्यू करते रहते हैं तो आपको पता चलता रहता है प्रोग्रेस क्या है। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रैकिंग सिस्टम हम जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ये इस चीज़ को, जो आपकी बात है मेरे ख्याल से इस मसले का हल यही चीज़ है कि अगर हम इसको रिव्यू करें, बार बार रिव्यू करें, क्वार्टरली रिव्यू करें, और प्रोग्रेस को चेक करते रहे तो यकीनन ये चीजें एग्जीक्यूट हो सकती है। कल्चरल इश्यूज है यकीनन है, लेकिन कल्चर में और आप मिलके बनाते हैं, जैसे हम एक्ट और रिएक्ट करते हैं वही कल्चर होता है। और जैसा मैं करूंगा, जैसा मेरे एक्शंस होंगे, वैसे मैं अपने स्टाफ से भी मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करूंगा और होपफुली ये चीजें हो जाएंगी।
माजिद भाई, माजिद भाई माइक म्यूट है आपका, माइक अनम्यूट कर लें प्लीज।
आ रही है बात?
जी माजिद भाई।
अच्छा नदीम खान, जितना खालिद भी कह रहे थे, कहने को तो बहुत अच्छी चीजें लगती है कि भाई अकाउंटेबिलिटी भी होगी, और आपने अंपायर्स की भी बात की, मैच रेफरीज की भी बात की, और आपने मेरिट की भी बात की, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा होता कम कम है। हेडलाइंस तो जरूर दी जाती है कि भाई ये हो जाएगा। आपने भी हमारे साथ दर्जनों प्रोग्राम किए, वहां भी हम यही चीजें डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स का जो गढ़ रहा है ना माजी में, वो भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी रही है, कि जितनी पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिटिक्स जन्म लेती है वो भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी से जन्म लेती है। तो ये जो दो तीन चैलेंजेस हैं, इनसे किस तरह आप निकलने की कोशिश करेंगे?
देखिये माजी भाई, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं और आपने देखा होगा मैं जहां भी काम किया है, कोशिश यही रही है कि मेरिट पे हमेशा जो भी टीमें बनाई, जो भी काम किया, हमेशा उस पर मेरिट पे किया है। और बात यह होती है कि आप जो बिहेवियर दूसरों से मांगते हैं पहले अपने आप को उसमें मॉडल करते हैं। तो मैंने हमेशा से, मेरी हमेशा से कोशिश रही है, आप सब जानते हैं कि मैं कभी भी मेरिट के अलावा कभी बात नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, और यही मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग काम करें वो इस तरह करें। तो होपफुली बिल्कुल आपकी बात है, ये हमारे इश्यूज हैं और इस पे मेरी नजर भी है यकीनन, और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी, और जैसे मैंने कहा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपका बिहेवियर खुद कैसा है। तो आप लोगों ने, आप बेहतर जज हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो भी अब तक मैंने काम किया है उसमें आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, तो आपको जब यकीन बताएगा ये चीज।
थैंक यू जी। आई एम मूविंग ऑन, अली हसन और उबैद, फिर पहले अली फिर उबैद।
नदीम भाई आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ आवाज आ रही है।
नदीम भाई, जैसे आपने बताया कि डोमेस्टिक और हाई परफॉर्मेंस को जो है आप लोगों ने मर्ज कर दिया है, और टैलेंट प्रोग्राम में आप ट्रैकिंग भी करेंगे, आमतौर पर देखा जाता है कि क्लब्स जो होते हैं जो प्राइवेटली चला रहे होते हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे होते हैं, अकेडमीज होती हैं, तो वहाँ से टैलेंट को उठाया नहीं जाता, वो सिर्फ पैसा दे रहे होते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्राइटेरिया क्या रखेंगे पूरे, जैसे सिंध में कर रहे हैं तो सिर्फ कराची के तक रहेंगे, हैदराबाद मेजर सिटीज या अंदर के इलाकों में भी जाएंगे जहां पीसीबी कभी गया नहीं है? थोड़ा सा ये बताएगा किस तरह से क्राइटेरिया बनाया जाएगा ताकि बच्चों को जो है वो उनको यूटिलाइज किया जा सके।
देखिये बहुत आपका अच्छा सवाल है अली। असल में देखिये कुछ अरसे से आपको पता है क्लब क्रिकेट भी नहीं हो रही है, और बहुत सारी जो एसोसिएशन भी जो नया आईना है पीसीबी का, उसकी वजह से अभी रुकी हुई है। तो हमारी तो ये प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है हम उनको जो है काम करना वो शुरू कर दें, हमारी क्लब क्रिकेट शुरू हो जाए, हमारी स्कूल क्रिकेट शुरू हो जाए। और वो जैसा कि आपको पता है जो नया सेटअप है उसमें 90 शहरों में इस तरह की चीज़ होगी। तो वो जो आपकी जो एक बात है कि जी हम इंटीरियर में नहीं जाते, वो ऑलरेडी खुद ब खुद उसमें अगर जब हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो सारे के सारे जो है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा टैलेंट हंट स्कीम्स पहले भी होती रही हैं, बहुत दफ़ा हुई हैं, इंटीरियर सिंध में भी जाके हुई हैं, और जो कहना चाहिए फ्रंटियर में भी जाके काफ़ी जो रिमोट एरियाज है वहाँ पे भी हुई हैं, इवन साउथ पंजाब में भी हुई हैं, और उनसे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है। और जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ, जैसे मैंने कहा पहले भी कहा था कि जो लेगेसी है उसको लेके चलेंगे, जिन चीज़ों से फ़ायदा हुआ उसको तो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, और आप उसी के ऊपर चीज़ें बिल्डअप करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। उबैद अवान बात कर रहा हूँ। अच्छा नदीम भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर तस्वर ये होता है कि पीसीबी में जो भी तैनाती होती है उसमें मामलात पहले तय किए जाते हैं और इश्तहार बाद में आता है। जब आपको कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा था उस टाइम भी आपका नाम मार्केट में आ गया था कि नदीम खान को कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है, फिर जब आप डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इश्तेहार आया तो उसमें भी आपका नाम जो है वो पहले आ गया कि नदीम खान को बना। क्या आपकी तैनाती को हम ये समझें कि ये बिल्कुल शफाफ तरीके से है? और दूसरा ये है कि इस पोस्ट पर आपकी सैलरी क्या होगी?
हाँ, अच्छा, पहली चीज तो ये कि शफाफ है कि नहीं है, ये तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल शफाफ है, मैंने तो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। अब बात ये होती है कि देखिए, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा है तो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि कौन जीतेगा, ऐसे आप लोग भी प्रिडिक्शन करते हैं, तो मेरा सिर्फ मेरे ख्याल से मेरा वाहिद अकेला नाम आप लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं किया था, और लोगों का भी नाम किया था, अगर आप लोगों को इतना और या किसी को भी इतना श्योर होता तो सिर्फ मेरा नाम देता। तो ऐसा नहीं है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और मेरे ख्याल से क्योंकि मैं मेरा नाम हर दफ़ा आ रहा होता है, हर जॉब के लिए आ रहा होता है, और वो इसलिए है कि मैं पिछले बोर्ड के साथ भी काम करता रहा हूँ, मुसलसल बोर्ड के साथ काम करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ जो भी जब भी काम किया है तो लोगों ने अप्रिशिएट किया है, आप लोगों ने भी किया है, और जो बोर्ड के अहदेदार हैं उन्होंने भी किया, पिछली जो रिजीम थी उन्होंने भी किया है, ये भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से नाम आ रहा होगा पहले से। लेकिन एज फार एज मैं इसको ये समझता हूँ, आई एम कंसर्न कि मैंने पूरा प्रोसेस कम्प्लीट करके और इसके थ्रू आया।
और सैलरी?
सैलरी तो आपकी क्या है, आप हमेशा हमारा सवाल करते हैं, अपनी तो सैलरी बताएं किसी दिन
हम भी बता देंगे,
क्या सैलरी है, क्या क्या है आज, सारे आप लोग पहले बताएं, मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, पेन निकाल लिया, चले बताएं अपनी अपनी एक एक करके बताएं क्या इसकी क्या सैलरी है।
नदीम भाई
आज ही कर लेते हैं यार, ये बड़े पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते।
नदीम भाई हम लोगों ने मिल रही थी वो भी कट,
मैं खुश रहता हूँ अपनी सैलरी जो भी हो ना वैसे भी खुश रहता हूँ, कोई मसला नहीं।
नदीम भाई ये
इमाद आपका माइक म्यूट है, एक सेकंड प्लीज, इमाद माइक म्यूट है आपका,
सॉरी लालू साहब आप वेट कीजिए प्लीज, टर्न बाय टर्न हम आ रहे हैं, अतीक नेक्स्ट और फिर शायद आज।
अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई।
वालेकुम सलाम अतीक।
नदीम भाई, जिस तरह इलेक्शन होने वाले हैं उतना सियासी जमाते अपने मंसूर लेके आती हैं, वो पढ़ने में और बोलने में बड़े अच्छे हमें लगते हैं, लेकिन जब वो इकदार में आ जाते हैं तो शायद अमल नहीं होता। खैर, इस हवाले से आपने पहले भी जवाब दे चुके, मेरा सवाल ये था कि अब आप डायरेक्टर अकेडमी हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स, अब बहुत से कोचेज भी आप हायर करेंगे, हेड कोचेज, और ये तो क्या वो हेड कोचेज आप मुल्कियों को तरजीह देंगे, पाकिस्तानी को तरजीह देंगे या फॉरनर को तरजीह देंगे कि कोई फॉरनर कोच जो है वो होना चाहिए? क्योंकि हमने देखते हैं कि अकेडमी में जहाँ बच्चों की सही तरबियत होनी होती है वहाँ बिल्कुल लो प्रोफाइल कोचेज जो है वो कोचिंग के ऊपर इंतजाम दे रहे होते हैं, लेकिन हाई प्रोफाइल पाकिस्तान टीम का जहाँ ताल्लुक होता है तो वहाँ बड़े बड़े हायर किए जाते हैं। आप क्या चाहेंगे कि अकेडमी लेवल पे जो है अच्छे क्वालिफाइड पाकिस्तानी भी हैं, फॉरनर्स भी हैं, किन को आप तरजीह देंगे? थैंक यू
अतीक, बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपको, बिल्कुल ये प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, आप लोग भी क्रिकेट से इन्वॉल्व है, हम भी क्रिकेटर और सब इस चीज़ को जानते हैं कि ये सारी ये प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, अभी जो हमारा प्लान है वो सबसे पहले तो हायरिंग से पहले असेसमेंट है, जो करंट कोचेज हैं, करंट स्टाफ है, उसकी असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको पहले असेस करें कि कौन किस काम में अच्छा है, और उनको उस जगह पे लगाया जाए जो जिस काम में वो अच्छे हैं, और उसके बाद जो गैप्स आएंगे यकीनन उसको एडवर्टाइज करेंगे, और उसमें कोई पाबंदी नहीं, और मेरी नज़र में इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि फ़ौरन अगर हमें सूट करता है या हमारे लिए अच्छा है तो फ़ौरन को भी आना चाहिए, और अगर लोकल अच्छा है लोकल को भी आना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जॉब एडवर्टाइज़ की जाती है या जो जॉब जिस काम के लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है किसी शख्स की, वो उस पर पूरा उतरता है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से मैं इसको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता हूँ इसके मुकाबले में कि वो फॉरेन है कि लोकल है। तो ये हमारी कोशिश होगी कि जो भी जिस काम के लिए जिस जगह के लिए हमें रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से किसी भी कोच को या कोई ऑफिशियल है उसको अपॉइंट करें।
शायद भाई,
थैंक यू।
शायद भाई माइक अनम्यूट कर लें प्लीज।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है?
वालेकुम सलाम जी शायद भाई।
मेरा नदीम, आप काफी अरसे से इन्वॉल्व हैं जूनियर लेवल के क्रिकेट में, ओवरऑल आपकी नजर में क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट का, टैलेंट की कमी है या टैलेंट की ग्रूमिंग की कमी है?
शायद भाई, जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो जो मैं समझता हूँ वो मेंटल ग्रोथ की है. हमारे जो सिस्टम है उसमें वाई का चांस नहीं है किसी के पास भी कि वाई क्यों, सवाल कोई नहीं कर सकता. तो मेरी ये कोशिश होगी कि जरा ओपन, हमारी कोचिंग भी और जो मेरी मैनेजमेंट भी है वो ओपन माइंडेड हो, जो नए आइडियाज को एक्सेप्ट करे और लोगों की इस तरह से मेंटल ग्रोथ होती है. तो जो अब तक मेरे हिसाब से जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट की, जो हमारी परफॉर्मेंस भी इनकंसिस्टेंट होती है, उसकी ये वजह है कि मेरे ख्याल से मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि ये जो प्लेयर आज के हैं ये स्किल लेवल में हमारे दौर के प्लेयर से अच्छे थे, लेकिन जो इनकी गेम अवेयरनेस है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे दौर के प्लेयर के अंदर होती थी. उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, नंबर ऑफ मैचेस इनके कम होते हैं, लोकल क्रिकेट कम होती है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है द वे दे हैव बीन कोच्ड, कि उनको सवाल करने का नहीं होता, वो कुछ भी पूछते कि जी कैसे करना है तो कोच उनको बता देता है कि जी कैसे करना है, और कभी ये नहीं बताता कि क्यों करना है ऐसे. तो इसकी वजह से मेंटल ग्रोथ रुक जाती है. मेंटल डेवलपमेंट जो है, मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिस पे हमको काम करना है. जो हम ये डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएंगे इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करेंगे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर, ताकि क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जिधर आपको स्प्लिट ऑफ सेकेंड में डिसीशन लेना होता है. अगर आपका मेंटल, आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आपकी डिसीशन मेकिंग स्लो हो जाएगी. तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े दुनिया के आपने प्लेयरों से सुना होगा 80-90% ये मेंटल गेम है. तो मेरे ख्याल से हमें इस पे बहुत एम्फसाइज करना है.
थैंक यू शाद भाई. मूविंग ऑन खिजर और फिर नसीम राजपूत. शाद भाई काइंडली माइक अपना म्यूट कर लें प्लीज.
नदीम भाई, सबसे पहले जितना भी आपने मेंटल अप्रोच की बात की, तो जिस तरह से हम देखते हैं चाहे वो जूनियर लेवल की क्रिकेट हो या सीनियर लेवल की क्रिकेट हो, उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि हम चाहे बायलैटरल सीरीज हो या ट्राई नेशन सीरीज हो, उधर तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मगर जब भी हम बड़े किसी इवेंट में जाते हैं, ICC इवेंट हो, कोई बड़ा मैच हो, क्वालिफाइंग सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की बात होगी, सेमीफाइनल हो, तो वहाँ जो है हमारे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर जिनके कैप्टन तक जो है ना उनके हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे होते हैं, और ये साफ दिखाई दे रहा होता है. सीनियर हो या जूनियर खिलाड़ी हो, वो अपना अपना गेम खेल कर अपनी, वो कहते हैं ना, जान बचाओ खत्म, उस पर जिम्मेदारी ना आ जाए हार की, तो वो लेवल होता है. बीच में पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की बात हुई कि शायद इनके साथ एक्ट्रेस लगा दें. और दूसरा सवाल मुझे ये है कि आप क्योंकि जूनियर क्रिकेट से रहे हैं, तो कितना जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एक ऐसा नाम जोड़ देना जिसकी रेस्पेक्ट भी हो, जिसको लोग जानते भी, जैसे इंडिया में राहुल द्रविड़ की बात की जाती है या और भी प्लेयर्स की बात की जाती है, यहाँ खान के हवाले से बात होती रही, क्योंकि अमूमन यही देख रहे होते हैं कि जो मौजूदा मॉडर्न क्रिकेट को जो लोग जानते हैं वो जूनियर के साथ जुड़े भी नहीं होते या जो प्लेयर हैं, तो कितना जरूरी है इस तरह के मेंटोर जो जिनको मौजूदा प्लेयर बहुत अच्छे से जानते भी हो, करीब करीब खेलते हुए भी देखा हो और रिस्पेक्ट भी हो, तो इन दोनों चीजों को आप कैसा देखेंगे?
ठीक है इधर आपका पहला जो सवाल का हिस्सा है ना, वो तो शाहिद भाई के क्वेश्चन से काफी जो है रिलेट करता है. देखिए प्रेशर सिचुएशन जब भी आती है जब आप नॉकआउट स्टेज से पहुंचते हैं, और अगर आपकी मेंटल ग्रोथ सही से ना हुई भी हो, मेंटल टफनेस आपके अंदर नहीं हो, तो यकीनन आपको प्रॉब्लम आती है जो हमारी टीम को आती है, इसमें कोई शक नहीं है, आप तो बिल्कुल दुरुस्त है. तो मैंने जैसे पहले कहा कि हम एम्फेसाइज करेंगे मेंटल डेवलपमेंट ऑफ प्लेयर ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यकीनन उसके रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा यकीनन उसके रिजल्ट्स आएंगे. तो ये एक हमारी बिल्कुल जो प्रॉब्लम आप मेंशन करें वो मैं यकीनन मैं खुद उसको एक प्रॉब्लम समझता हूँ. दूसरी बात आपने जो की थी वो इसके बारे में की थी, क्या क्या कहा दूसरा आपके जो आखिरी सवाल का हिस्सा क्या था? आखिरी सवाल का हिस्सा क्या था दूसरा आपने जो कहा था?
मैंने आपसे दूसरा सवाल ये कहा था कि आप कितना जरूरी हमारे लिए ऐसे.
अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल सॉरी हाँ. अच्छा देखिए जैसे आपने कहा ना, बड़ा नाम बिल्कुल इंस्पिरेशन जरूर देता है, लेकिन सिर्फ इंस्पिरेशन से काम नहीं बनता. आपको काम आना चाहिए, जो काम जिस काम जिस जॉब के लिए आपको लगाया जाता है वो काम आपको आना बहुत ज़रूरी है. तो हम हमेशा ये बात करते हैं और देखते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ और उन्होंने इस तरह के लोग लगाए हैं, और वो बिल्कुल इसीलिए लगाते हैं कि इंस्पिरेशन होती है उनसे, लेकिन उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम भी लगती है जो कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग टीम होती है। बिल्कुल ये तजुर्बे दुनिया में कामयाब रहे हैं, लेकिन इसमें यकीनन आपको काम आना जो है वो आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है इसके अंदर साथ।
नसीम भाई, नसीम राजपूत
जी, नदीम भाई बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले तो बड़ी जिम्मेदारी आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सौंपी है। मेरी आवाज आ रही है?
थैंक यू, आ रही है आवाज।
बिल्कुल, आजकल वैसे भी पीसीबी में दो तीन जिम्मेदारियां देने का रिवाज है। अभी आप कॉपी पेन लेके बैठ गए, मैंने कहा शायद अकाउंट्स भी आगे आप देखेंगे जिस तरह सैलरी पूछ रहे थे। एक लाइटर मोड में कह रहा हूँ मैं, हमने आपको काम करते हुए देखा, आपने यूबीएल की टीम को जिस तरीके से उनका ड्रेस कोड चेंज किया था, जिस तरीके से उसे डिसिप्लिन किया था, फिर उसके बाद भी हम आपको काम करते हुए देखते रहे, तो आपकी स्किल्स वाकई खासी बेहतर दिखाई देती है। देखिए नदीम साहब, आपसे जानना यह है, हम जूनियर सतह पर इतना फोकस नहीं करते हैं, हमारा सारा फोकस होता है सीनियर टीम के ऊपर, हम ज्यादातर उसी जानिब देख रहे होते हैं। आपने स्किल्स डेवलपमेंट की बात की, आपने खिलाड़ियों को मेंटल टफनेस की बात की, आपने अंपायरिंग की बात की, आपने ग्राउंड्स की बात की, आपने आउटफील्ड की बात की, लेकिन एटीट्यूड ग्रूमिंग अगर जूनियर सतह पर खिलाड़ियों की जाए, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, अभी हमने इमामुलक की भी एक वीडियो देखी थी, तो अगर इस ये काम आप अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इस पे भी फोकस करें कि अंडर 19 की सतह पे, अंडर 16 की सतह पे एटीट्यूड ग्रूमिंग का काम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करे, तो क्या वो बेहतर होगा?
यकीनन बेहतर होगा नसीम, ये भी एक जाहिरी बात है जो आजकल की क्रिकेट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मल्टी डायमेंशनल हो गई है, आपका सिर्फ खेलना नहीं, आपकी अपीयरेंस, आपका बात करना, आपका चीजों को समझना, आपको पॉलिटिक्स को समझना, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पैसों को, मामलात को समझना, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये समझता हूँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम है कि ये प्लेयर्स को इस तरह की अवेयरनेस दें, इस तरह के ट्रेन करें, और यकीनन हम इस पर काम करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो जब अब अंडर 13 से जो वो जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसके अंदर ये सब डिसिप्लिन और इस तरह की सारी चीजें उसके अंदर होंगी, उस प्लेयर की एक एक चीज ट्रैक हो रही होगी और डेवलप की जाएगी, और इंशाल्लाह आप डिफरेंस देखेंगे। और ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, जैसे मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और स्पेशली मॉडर्न लीग के लिए।
थैंक यू,
थैंक यू नसीम भाई, काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। मूविंग ऑन इबादुल्लाह, उसके बाद बदीउज़्ज़मान। इबादुल्लाह आप हैं? इबाद बदी, आप पहले करने सवाल। माइक अपना, माइक अनम्यूट कर लें, माइक म्यूट है आपका।
अब आवाज आ रही है? हेलो
जी जी,
हाँ, आवाज आ रही है बदी, आ रही है आवाज।
अच्छा नदीम भाई, सबसे पहले तो मुबारक हो आपको, एक तो इस ओहदे पर आपको जो है वो मौका मिला है। सबसे बड़ी बात है, जब आपने ये ओहदा संभाला तो पाकिस्तान क्रिकेट काफी मुश्किलात का शिकार है। एक कोरोना वायरस की वजह से तमाम खेलों के मैदान जो है बंद है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो नहीं रही। आप भी जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट के हेड करते थे, वो डिपार्टमेंट भी बंद हो चुके, बहुत सारे खिलाड़ी जो है इसमें परेशानी का भी शिकार है। कुछ ऐसा प्लान नदीम भाई आपके जेहन में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का, या इनको इस तरफ आप अपनी तरफ माइल कर सकें कि उन खिलाड़ियों का भी कुछ हो, ताकि वो जो बेरोजगार हो रहे हैं और इस मुश्किल कंडीशन में अपने सर्वाइव कर रहे हैं, तो उन खिलाड़ियों के लिए भी कुछ होना चाहिए पाकिस्तान टीम की तरह, ताकि जो खिलाड़ी माजी में हमें स्टार थे वो आजकल जो है वो काफी मुश्किल के शिकार नजर आते।
देखिए ये तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है प्लेयर्स की वेलफेयर को देखना, और अभी आपने देखा होगा जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये जो अभी अनाउंस हुए हैं, इसमें अभी एक इन्होंने एक इमर्जिंग कैटेगरी निकाली है। मैं सिर्फ आपको सोच का के हिसाब से बता रहा हूँ, एक इमर्जिंग कैटेगरी निकाली है कि यकीनन जो लोग ABC जो है कैटेगरी में नहीं आ रहे थे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और इसके साथ एक और इन्होंने एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस कराई है कि जो फ्रेंच प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के, उनको डोमेस्टिक का बहुत बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिसको A1 और या फिर कोई एलीट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये क्रिकेट बोर्ड हर वक्त ये चीजें सोचता रहता है, और मैं काफी अरसे से इनके साथ दूसरी पोजीशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अक्सर, क्योंकि मैं क्रिकेट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं फॉर्मर क्रिकेटर हूँ, तो मैं हमेशा जो क्रिकेटर है उनकी वेलफेयर के लिए कोई भी जो सजेशन होता है वो मैं इनसे डिस्कस करता रहता हूँ, और मैंने हमेशा ये देखा है इनकी अप्रोच बहुत ही वेलकमिंग रही है, वो सुनने के लिए भी और उस पर काम करने के लिए भी। तो होपफुली जैसे आपने कहा, बिल्कुल पूरा मुल्क और क्या पूरी दुनिया इस वक्त मुतासर है इस कोरोना वायरस की वजह से, और यकीनन जो बिजनेसेस हैं वो भी श्रिंक हो रहे हैं, इकॉनमी श्रिंक हो रही है, दुनिया की मुश्किलात आएंगी, और यकीनन पीसीबी और मैं अपने जो भी रोल प्ले कर सकता हूँ उसमें जो रोल प्ले करूँगा, जो प्लेयर्स की वेलफेयर और उससे खेल से जुड़े लोगों की वेलफेयर के लिए जो पीसीबी कर सकेगा, मैं उनको बिल्कुल उस मौजू पर उनसे बात करूँगा और मशवरा करूँगा।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इबादुल्ला, और उसके बाद फिर हम लेंगे क्वेश्चन असगर भाई से। तो पहले इबाद कर लें और फिर असगर भाई से लेते हैं। इबाद आपको आवाज आ रही है मेरी?
कैन आई गेट द चांस टू आस्क द क्वेश्चन प्लीज?
आप बिल्कुल आपके पास आ रही हैं, ये पहले इबाद से ले लेते हैं।
ऐसा नहीं, आई थिंक ये बात नहीं है। असगर आप आ जाएं प्लीज।
जी नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम असगर।
वो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप फैमिली में शामिल हो।
थैंक यू।
एक मिनट प्लीज, एक मिनट इबाद, अब अपना माइक बंद कर लें। आपके लिए दो दफा वेट किया था, दोबारा आएंगे आपके पास, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आप असगर आप चले प्लीज।
तो नदीम भाई, जानना ये चाह रहे थे कि जब आप पीसीबी फैमिली में आए हैं तो आपको दो अहम शख्सियात की जिम्मेदारी आपको दे दी गई, मुदस्सर नजर और हारून रशीद की। मुदस्सर हाई प्रोफाइल क्रिकेटर रहे, बहुत वर्ल्ड वाइड उनका एक्सपीरियंस भी रहा, और एकेडमी में जो दिन उन्होंने गुजारे वो सबको पता है। हारून रशीद भाई मुतनाज़ा रहे डोमेस्टिक के हवाले से, इतने जितने तजर्बात किए गए, और अक्सरियत में ये कहा जाता है कि इसके जिम्मेदार हारून रशीद रहे। अब जब आप इस सिस्टम पे आ गए हैं तो सवाल मेरा यह है कि ये जो तजर्बात का सिलसिला है वो जारी रहेगा? हाल ही में एक तजर्बा जो किया गया, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद किया गया और आप खुद डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आप अपनी पोजीशन को देखते हुए इस को बहाल करने की कोशिश करेंगे या पीसीबी के साथ जाएंगे डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से? दूसरा सवाल मेरा यह था कि जो प्लेइंग तजर्बा है आपका वो मुदस्सर से बहुत कम है, तो ऐसे में हाई प्रोफाइल कोचेस का इंतखाब आपके लिए एक मुश्किल मरहला नहीं होगा?
ये दो अलहदा चीजें। एक तो मैं आपको बता दूं, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट को या हाई परफॉर्मेंस सेंटर को चलाना या कोचिंग को चलाना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जैसे कोचिंग है एक अलग फील्ड है, खेलना एक अलग फील्ड है, टीवी पे बात करना एक अलग फील्ड है, एक्सपर्ट ओपिनियन देना जर्नलिज्म एक अलग चीज है। तो ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आपने अगर बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, अगर हाईएस्ट लेवल पे खेली हुई है, और दुनिया में बहुत सारी इसकी मिसालें हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे अभी इंग्लैंड के हाई परफॉर्मेंस के जो डायरेक्टर थे उन्होंने तो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली हुई। तो ऐसा इससे ये मोर ऑफ अ मैनेजमेंट जॉब कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, और आप आपके साथ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जो कि मुख्तलिफ फील्ड देख रहे होते हैं, लेकिन एक आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैनेजमेंट एक्सपीरियंस किस तरह का है और किस तरह आप हाई परफॉर्मेंस सिस्टम में कितना काम कर चुके हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने हमेशा से, जैसा आपने देखा होगा, क्रिकेट भी बड़े पाथवे के थ्रू खेली है, और जब मैं मैनेजमेंट में आया हूँ जब भी पाथवे के थ्रू चल रहा हूँ, मैं जूनियर क्रिकेट से शुरू करके फिर सीनियर क्रिकेट में अंडर 19 PSL फर्स्ट क्लास, तो मैं सारी चीज़ों के तजुर्बे करके जो है मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं बहुत जल्दी जल्दी जंप पे लगाऊँ, और बहुत सी दफ़ा मुझे ऑफ़र आई है जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, मुझे काफ़ी बड़ी बड़ी ऑफ़र आई है क्रिकेट बोर्ड से जिसको मैंने रिफ्यूज़ किया, सिर्फ इस वजह से कि मेरा उस वक्त वो एक्सपीरियंस नहीं था। लोग मेरे काम को अल्लाह का शुक्र है हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब तक मैं खुद अपने आप को तैयार नहीं समझता मैं कभी भी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं आई एम रेडी फॉर इट इस चैलेंज के लिए. बड़ा चैलेंज है यकीनन, जैसे आपने कहा बड़े हाई प्रोफाइल लोग इस पे काम करते रहे, बिग शूज टू फिल इन, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और मेरा ये तजुर्बा है इतना कि मैं समझता हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से और यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छे काम करके जाऊँगा इंशाल्लाह.
लालू खान,
हेलो, आवाज आ रही है?
आप माइक ऑफ कर
दीजिए. एक जवाब रह
गया. अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई.
डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से जवाब रह गया.
डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो ये देखे, मैंने तो सारी जिंदगी खुद डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेली है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि मैं क्या चीज समझता हूँ. ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि पाकिस्तान की मेरे ख्याल से जो कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर हो, जिस पे कॉन्सेंसस हो, उसका फैसला हमें करना चाहिए. और बहुत सारी चीज़ें ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है इस पे जो आप बात कर रहे हैं, और जैसे ही इस पे कोई फैसला होगा हम यकीनन आपके सामने, आपको मेरा ही काम होगा कि वो चीज़ मैं आपके सामने लेकर आऊँ.
नदीम भाई आवाज़ आ गई?
हाँ इबाद
जी. नदीम भाई सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको, और दूसरा ये कि एक बड़ी जिम्मेदारी है आपको, आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर, और आपने एक दिन मिलने के बाद ही आपने दो पेजों पर अपना प्लान बना दिया है. तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हाई परफॉर्मेंस अकेडमीज आपको किस हालत में मिली है, या तो उसके अंदर वहाँ काम नहीं हो रहा था प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर, और या फिर किस तरह की पोजिशन आपको मिली है वहाँ पर, और क्या आप काम करना चाह रहे हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के अंदर? और दूसरा सवाल ये है कि आपका बड़ा तजुर्बा है, जैसे आपने यूबीएल के अंदर काम किया, प्लेयर्स को ग्रूम किया, प्लेयर्स को बनाया, और आपकी कोचिंग के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान टीम में भी शामिल हुए, तो क्या सरफराज आपका, किस तरह से सरफराज का फ्यूचर आप देख रहे हैं? तो क्या अब आने वाले वक्तों के अंदर वो सरफराज पाकिस्तान टीम में शामिल हो पाएंगे, और अगर सरफराज को नेशनल कोचिंग सेंटर्स के अंदर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, स्किल्स बनाने के लिए उनको बुलाएंगे?
बड़े लंबे सवाल की बात. अच्छा, पहले सरफराज का दे देता हूँ, फिर ये भी निकल जाएगा. सरफराज का मसला ये है कि देखो, ये तो सारा सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड कर, मेरा तो सिलेक्शन से बिल्कुल भी ताल्लुक खत्म हो गया क्योंकि मैं पहले तो कोऑर्डिनेटर था, मैंने वो चीज छोड़ दी. हमारी जो जॉब है वो प्लेयर डेवलपमेंट की है, और सरफराज को और अगर टीम मैनेजमेंट को, टीम सिलेक्टर्स को जरूरत होगी सरफराज को किसी भी जगह पे बुलाने की, वो फैसला करेंगे उसका. जहां तक उसके यूज करने का ताल्लुक है हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में से, वो हमारा प्लेयर है, उस सिस्टम में प्लेयर होगा, तो जो भी उस सिस्टम में प्लेयर होगा वो तो ये फैसिलिटी भी यूज़ करता है. इसमें तो कोई किसी के लिए ख़ास तौर पे तो कोई नाम लेके तो आप नहीं कर सकते, वो एक उसकी SOPs होंगी. अगर वो SOPs के हिसाब से जो भी प्लेयर क्वालिफाई करता होगा, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो कोई अंडर 19 का बच्चा हो, तो उसको इजाज़त होगी वहाँ काम कर खेलने की.
ये बात आपकी डिस्टॉर्शन बहुत है, अब आपको मिल गया जवाब जी? हाँ ओके. लालू खान साहब और उसके बाद जुबैर नजीर. ये बात माइक ऑफ कर दें प्लीज.
अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई.
वालेकुम अस्सलाम.
नदीम भाई पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक. मैं लालू खान बलूचिस्तान से. नदीम भाई जैसे असगर भाई ने कहा कि दो बड़े हाई प्रोफाइल बनते थे, मुदस्सर नजर साहब और अरुण रशीद साहब, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े नाम थे पाकिस्तान के और जिस तरह काम कर रहे थे. मैं बलूचिस्तान के हवाले से एक सवाल करना चाहूंगा आपसे. मेरा सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन खैर यही एक ही सवाल है, फिर हम जवाब तसली से दें. बलूचिस्तान में अगर हम बात करें, कुछ ऐसी अजला हैं कि उनमें प्लेइंग राइट्स के मसाइल हैं, प्लेइंग राइट्स वहाँ पर उनको नहीं मिले हैं, कुछ ऐसे टैलेंट हैं, मैंने खुद वहाँ पर रिपोर्टिंग की है, मैंने खुद कवरेज की है वहाँ पर, कि काफ़ी बेहतरीन टैलेंट हैं, और फिर से ऊपर से यहाँ पर बलूचिस्तान में जो PCB की तरफ से जो कोच की तैनाती हुई है राजन साहब, काफ़ी अरसे से 4-5-6 साल से यहाँ पर तैनात हैं, बड़े शिकायतें इनसे भी आ रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई तब्दीली ऐसी नहीं आई. अरुण रशीद साहब की बात करें हम, मुदस्सर नजर साहब की बात करें हम,
آپ کی کیا سوچ ہے بلوچستان کے حوالے سے، خصوصاً اگر ان اضلاع کی بات کریں گے جہاں پر ٹیلنٹ کافی بہترین ٹیلنٹ موجود ہے، میں نے خود دیکھی ہے، میں نے کور کی ہے، لیکن انہیں انصاف نہیں ملا. ابھی آپ کے پلانز میں کیا شامل ہے پلیئر آف دا ڈیولپمنٹ، آپ کے کیا پروگرامس ہیں کہ بلوچستان میں آپ ان اضلاعوں میں جائیں کہ جو پلیئر ان کا حق ہے کہ وہ آئیں آگے؟ لیکن یہاں پر کوچ کی بھی بڑی شکایتیں ہیں، راجن صاحب سے بھی یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ بڑے فکس کروا دیتے ہیں، یہ اسکواڈ اپنی بنا لیتے ہیں جب یہاں پر ریجن کے ٹرائلز ہوں یا انڈر 19 کے ٹرائلز ہوں، مختلف سے ٹرائلز ہوتے ہیں، یہاں پر فکس کروا دیتے ہیں بڑی. یہاں پر آپ کی کیا سوچ ہے کہ آپ بلوچستان میں کیا آپ کی ارادے ہیں کہ آپ کروا دیں، یہ ٹیلنٹ کے حوالے سے اور کوچ کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ؟
لالو صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تو بہت زیادہ امپریسڈ ہوں پچھلے دو چار پانچ بلکہ پانچ سال میں جو بلوچستان کے انڈر 19 ٹیم نے پرفارمنسز دی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا دو سے تین پلیئر آپ کے اب پاکستان کے انڈر 19 میں بھی کھیلتے نظر آئے.
جی جی جی.
تو جو یہ چیز ظاہر کر رہی ہے کہ وہاں ٹیلنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں، یقیناً اس میں بالکل سچائی ہے کہ وہاں ٹیلنٹ ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جس طریقے سے باقی جگہ کے لوگوں کو ایکسپوجر مل رہا ہے، چانس کی بات نہیں کروں گا میں، ایکسپوجر مل رہا ہے، وہ ایکسپوجر آپ وہاں کے لوگ پلیئرس کو بچوں کو بھی ملنا چاہیے، اور اس کے لیے چاہے ہمیں وہاں پہ کیمپس کرنے پڑے، ہمیں اس جگہ پہ جانا پڑے تو جائیں گے، کیونکہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے. میرے خیال سے ہم پوری طریقے سے توجہ نہیں دے سکے جو کہ اب ہمیں آگے دینی چاہیے. میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. دوسری بات، جہاں تک راجنس یا کسی میں نام لے کے ویسے مجھے بات نہیں کرنی تھی، آپ نے نام لیا تو مجھے لینا پڑ رہا ہے. میں نے جیسے پہلے شروع میں بتایا کہ سارے کوچز کی فرام ٹاپ ٹو باٹم اسیسمنٹ ہوگی، اور وہ اسیسمنٹ یہ نہیں ہے کہ کیا وہ کوچنگ کس طرح سے کرتے ہیں، ان کے ڈسپلن اور وہ ایک بڑی تھرو قسم کی رپورٹ، وہ اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ فارم بنا ہوا ہے، اس میں اس کی ہر چیز آ جائے گی، ان کی ٹیم کی پرفارمنس، ان کی اپنی ڈسپلن، ان کی اپنی فٹنس. تو اگر راجن صاحب ان چیزوں پہ پورا اترتے ہیں تو ان کو وہیں ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی اور چیز میں اچھے ہیں تو جہاں کے لیے وہ اچھے ہوں گے وہاں پہ وہ چلے جائیں گے. تو اس پہ آپ یقین رکھیے، اور یقیناً جب وہ اسیسمنٹ ہوگی اس پہ آپ یقین رکھیے کہ وہ میرٹ پر ہوگی، اور میرٹ پہ اس پہ جو ہے اپوائنٹمنٹس اور پوسٹنگس میرٹ پہ ہوں گے.
ندیم بھائی پی سی بی میں جو لاسٹ جاتے پی سی بی میں جو ہمارے دوست جاتے ہیں اگر پہلی دفعہ ہو یا پھر آپ جا کے وہاں پر کام کریں، یہ سیلری کے بارے میں آپ لوگ بتاتے کیوں نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟
لالو اس پہ بات ہو چکی ہے پہلے، پلیز آئی تھنک ہم اس پہ دوبارہ کریں گے. یہ سیلری آف کورس ایک ڈسکس ہو چکا ہے آلریڈی، اور ایک پرائیویٹ میٹر ہے، اس پہ بات ہو چکی ہے.
یہ تو ہم ویسے بھی جوک کر رہے تھے پہلے سے.
اب آپ لیٹس موو آن، کائنڈلی اپنا مائک پلیز آپ میوٹ کر لیں، اور پہلے میری ریکویسٹ ہے زبیر نذیر، پھر محمود ریاض، اور پھر شعیب جٹ.
اوکے، السلام علیکم ندیم بھائی.
وعلیکم السلام زبیر بھائی، کیسے ہیں؟
اوکے، تھینک یو. فرسٹ آف آل آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور سرخرو کرے آپ کو آپ کے جو اسائنمنٹ ملے ہیں. اچھا، کوشچن میرا ہے، ذرا پلیز اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیجیے، کیونکہ بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو دو اسائنمنٹ ایک ساتھ ملے ہیں اور دونوں الگ الگ یعنی لائنس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہم بات کریں، کیونکہ ظاہر ہے کہ پی سی بی کا نیا کنسٹیٹیوشن بھی بنا ہے، اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہونا ہے، اور اس میں بیسکلی چیز جو ہے وہ ہمارے جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا نیا اسٹرکچر، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرانے اسٹرکچر کے مقابلے میں یہ نیا 6 ریجن کا اسٹرکچر کتنا کارآمد رہے گا، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی اور لاہور کرکٹ کے ہب ہوا کرتے تھے، اور پرانے جو اسٹرکچر تھے اس میں ہماری سندھ کی اپنا کراچی کی اور لاہور کی دو دو ٹیمیں ہوا کرتی تھیں، لیکن نئے سسٹم میں اب کیونکہ سندھ کی پوری ایک ٹیم بنے گی اور 17 زون میں سے مل کے جو ہے ایک ٹیم آپ کو بنا کے آگے دینی ہوگی، تو اس کو ذرا سا تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ اس کو کیسے کر سکیں گے، اس سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہوگا وہ تو ضائع نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ امپائرنگ کے حوالے سے، امپائرنگ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، آپ تو نظر رکھتے ہیں، ایک ڈیسیجن جو ہے پلیئرز کے لیے مطلب پوری زندگی کا اس کا جو ہے کیریئر کو تباہ اور برباد بھی کر سکتا ہے اور ڈیولپ بھی کر سکتا ہے، تو اس چیز کے اوپر مجھے کائنڈلی ذرا بتائیے گا.
جی ٹھیک. اچھا، ایک آپ نے کہا کہ یہ سوری دونوں ڈپارٹمنٹ الگ الگ ڈائریکشن میں کام کرتے ہیں، ان دونوں کا کام ایک ہی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے پاکستان کے لیے بہترین پلیئر ڈیولپ کرنا. ایک جگہ کوچنگ ہوتی ہے, ایک جگہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, کام ایک ہی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ایک جگہ آپ تیار کر رہے ہیں, دوسری جگہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, تو ان دونوں کو ایک ہی ہونا چاہیے میری نظر میں. اور میں سمجھتا ہوں یہ کہ اچھا مرجر ہے, اس سے یقیناً پلیئرس کو بھی فائدہ ہوگا, ایک ڈائریکشن ملے گی اور ان کے لیے ایزی ہوگا اپنے پاتھ وے پہ پروگرس کرنا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ڈومیسٹک اسٹرکچر میں جو چھ ٹیمیں ہو گئیں, پہلے بالکل آپ کی بات درست ہے, ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے دو ٹیمیں ہوتی تھیں, کراچی کی دو لاہور کی, اور اکثر ہم دونوں فائنل میں پہنچ جاتے تھے, بڑا زبردست کینڈیڈیٹ تھا. ابھی جب ہم نے ٹیمیں پچھلی دفعہ بنائی ہیں بیٹھ کے, میں نے راشد نے, انہوں نے ہم کو بلایا تھا جس وقت ہم کرکٹ بورڈ کے ساتھ نہیں تھے, میں راشد اور مصباح, ہم تینوں نے بنائی ٹیمیں. جب ٹیمیں کمپلیٹ ہوئیں چھ, تو ہم تینوں نے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگری کیا کہ اس کی صرف تین ٹیمیں فرسٹ کلاس کی بنتی ہیں, چھ بھی نہیں بنتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اینڈ میں ہم بیٹسمین ڈھونڈنے گئے تو ایسا ہوا کہ کچھ 22-23 کے ایوریج کے بیٹسمین ہم کو ڈالنے پڑے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طریقے سے فرسٹ کلاس جن کا 22-23 کا ایوریج ہو وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلنے کے اہل ہے. تو اب ہم ذرا امیجن کریں کہ چھ ٹیموں میں 22-23 کے ایوریج والے بھی آ رہے ہیں, تو اگر جو پہلے 16 ٹیمیں کھیل رہی تھیں اس میں کیا حال ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ سارے جو ٹاپ پرفارمر تھے وہ سارے ان تین چھ ٹیموں میں آ گئے, اور پھر ایسے بھی پرفارمر آئے جن کا 22-23 اور 24 کا ایوریج تھا. اور یہ میں لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم لوگ تینوں نے بیٹھ کے, جو کہ ہم بھی اس کے وکیل ہیں کہ بہت ساری آبادی بہت زیادہ ہے, ہم بھی اس پہ بات کرتے رہے, لیکن جب ہم اسٹیج پہ گئے تو میرا تو مائنڈ چینج ہو گیا اس کے بعد سے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرسٹ کلاس کا اگر جب ہم بات کرتے ہیں کہ گیپ کم ہونا چاہیے انٹرنیشنل سے, تو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کوالٹی آف کرکٹ بھی امپروو ہونی چاہیے. کوالٹی آف کرکٹ کیسے امپروو ہوگی؟ اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن پلیئر کا ہوتا ہے. اگر پلیئر کوالٹی پلیئرز نہیں ہوں گے اس لیگ کے اندر, تو کبھی بھی کوالٹی کرکٹ کی امپروو نہیں ہوگی. اس کے بعد جو آپ کا سیکنڈ چیز تھی, یقیناً اس میں امپائرز اور آفیشلز بھی آتے ہیں. اور میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اس اسٹینڈرڈ پہ جانا ہے, اور اس کے لیے ہم ضرور وہ جو ٹریکنگ سسٹم ہے جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں سب کی پرفارمنس چیک ہو رہی ہوگی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سارے ویڈیو اینالسٹ جو ہے ہر ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہر ڈیسیشن ہر چیز ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہوتا ہے. اس ریویو سسٹم کو ہم نے بہتر کرنا ہے. وہ ریویو ابھی بھی ہوتا ہے, اور ابھی بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے جو ہو رہی ہوتی ہے اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, ہمیں اس کو امپروو کرنا چاہیے, اور یقیناً ہم اس پہ کام کریں گے تاکہ امپائرنگ کے اسٹینڈرڈ امپروو ہو. تو جو میرے حساب سے یہ چھ ٹیمیں اگر فرسٹ کلاس کھیلتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا باقی نیچے ٹیمیں ہونی چاہیے, اس کو ایک پیرامڈ کی طرح کام کرنا چاہیے, اس کو نیچے اس کو وائڈ ہوتا جانا چاہیے, اور جو اسٹرکچر ہے وہ جب پورے طریقے سے چلنا شروع ہوگا تو آپ وہ دیکھیں گے وہ پیرامڈ ہی بنے گا, کیونکہ اس میں 90 سٹیز ہیں. اس کے بعد ان کی ڈسٹرکٹ ٹیمز ہوگی, اس کی کلب ٹیمز ہیں, اسکول کرکٹ ہے, وہ نیچے پول آف ٹیلنٹ آپ کا بڑھتا جائے گا. لیکن فرسٹ کلاس اگر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تو اس کو نہیں کھیلنی چاہیے. پھر فار دا سیک آف ہم کہیں کہ آبادی ہماری بہت زیادہ ہے تو ہماری فرسٹ کلاس ٹیمیں زیادہ ہوں, میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ آپ گریڈ ٹو میں چلے جائیں گے, وہ گریڈ تھری میں چلے جائیں, لیکن جیسے انگلش فٹ بال لیگ ہوتی ہے 1-2-3 اور نیچے تک کافی پروفیشنل ہوتی ہے, ہاں وہ اس کو آپ پروفیشنل لیگس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فرسٹ کلاس جو ہے نا 6 سے زیادہ ٹیمیں ابھی اس وقت پاکستان میں ہونی چاہیے جو پول آف پلیئرز ہمیں اویلیبل ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو اسٹیٹس ہم لوگوں نے دیکھے اس کے حساب سے ہمیں افسوس بھی ہوا تھا, جبکہ میں نے جیسے کہا کہ پہلے ہم دو دو ٹیمیں فائنل کھیلتی رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پورے سندھ کی ٹیم بنی ہے, لیکن اس دفعہ سندھ کی وہ پرفارمنس سامنے نہیں آئی جو آتی ہے, تو ہوپ فلی وہ آگے بہتر کریں گے. لیکن میرے خیال سے 6 ٹیمیں بھی اس وقت انف ہے فرسٹ کلاس کھیلنے کے لیے. نیچے میرے خیال سے اور ٹیمیں ضرور ہونی چاہیے, اس کو ایک پیرامڈ کی طرح قائم کرنا چاہیے, لیکن ہمیں فرسٹ کلاس کا ایک پرفارمنس کے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہوں گے کہ یہ نہیں ہو کہ ہر پلیئر فرسٹ کلاس کھیل رہا ہے.
تھینک یو ندیم بھائی فار دا ڈیٹیلڈ آنسر. محمود ریاض اور پھر شعیب جٹ. جی محمود. محمود آواز نہیں آ رہی آپ کی.
محمود آواز نہیں آ رہی.
محمود آواز نہیں آ رہی آپ کی. آپ شاید.
ہلو.
ہاں آ رہی
ہے. اچھا ندیم بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے جو کرکٹ اکیڈمی کے اندر جو کوچنگ ہے, اگر اس کی جو مینولز ہیں اگر ہم دیکھیں تو آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ, انڈیا, وہ سب میں ایک ہیں, لیکن پاکستان میں جو پرابلم آتی ہے کہ جو کوچز جب وہ نچلے لیول پہ کوچنگ کے لیے جاتے ہیں تو اپنا پرسنل ان پٹ بہت زیادہ دیتے ہیں, جو اپنی پرسنل اسکلز ہوتی ہیں, اور ہم نے بہت دفعہ دیکھا جس سے کہ کھلاڑیوں کو فائدہ ہونے کی بجائے بازوں کا نقصان ہوتا ہے کہ کسی کا بالنگ ایکشن تبدیل کرا دیا. وہ جو تھیوریٹیکل پڑھ کر رہے ہیں وہ اس پہ گائیڈ لائن پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنا پرسنل ان پٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا فٹنس کو لے کے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, جیسے کہ این سی اے کے اندر جو فٹنس تھے کچھ کھلاڑیوں کی بھی آوازیں اٹھ رہی کہ ہر وقت فٹنس فٹنس ہونی چاہیے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان دو پر آپ کیا کہیں گے؟
دو چیزیں دیکھیں, بالکل آپ نے یہ جو بات کی ہے, ایک تو کہ یہ جو کوچنگ کس طریقے سے ہو رہی ہے, دیکھیں اس چیز کا بالکل میرے خیال سے کرکٹ بورڈ کو بھی احساس تھا کہ انہوں نے اس کو اسٹرکچرل چینج کیا ہے. ایک کوئی اس میں آپ نے جاب دیکھی ہوئی ایڈورٹائز ہوئی ہے ہیڈ آف کوچنگ. ہیڈ آف کوچنگ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ کوچ کو تیار کرنا, یعنی کہ اس کو بہترین کورسز کرانا, بہترین کوالیفائی کرانا, اور اس کے بعد اس کا کام ہے کہ وہ کوالٹی آف کوچنگ پہ چیک رکھے گا. تو جو کہ میرے خیال سے یہ وقت کی ضرورت ہے جو ہم پہلے نہیں کر پا رہے تھے. میرے خیال سے شاید اسٹاف کی کمی ہوگی یا اسٹرکچر اس طرح کا نہیں تھا. تو جو آپ کی بات ہے وہ اس پہ یقیناً کرکٹ بورڈ کی نظر ہے, اسی لیے انہوں نے یہ الگ سے جاب کریٹ کی ہے ہیڈ آف کوچنگ, جس کی بیسک جاب یہ ہے کہ کوچ کو ایجوکیٹ کرنا اور پھر ساتھ میں اس کی کوچنگ پہ اس کی کوالٹی پہ کنٹرول رکھنا. تو وہ جو آپ کی شکایت ہے انشاءاللہ اس کا کام ہوگا, وہ اس شکایت کو دور کرے گا, اس کا اسائنمنٹ ہی یہی ہوگا. اور دوسری آپ نے کیا دوسرا بتائیے گا کہ کیا کہا؟
فٹنس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ کھلاڑی ہر وقت فٹنس.
دیکھیں اس میں میرا ایک اپنا وہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ ہم ڈیل کر رہے ہیں پلیئر سے, یہ پروفیشنل پلیئرس ہیں سارے, اور میرے حساب سے ان پروفیشنل پلیئرس کو پاور ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے. ہونا یہ چاہیے جو میرا ہمیشہ سے کام کا طریقہ ہے, میں یہ جب بھی پروفیشنل پلیئر کے ساتھ کام کیا ہے میں یہ کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی چیز ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ اسٹینڈرڈس ہیں, اس کو آپ نے اچیو کرنا ہے, اور اگر آپ اچیو نہیں کریں گے تو آپ کو اس اسٹینڈرڈ پہ کھیلنے میں پرابلم آئے گی, تو آپ کی سلیکشن میں بھی اس میں پرابلم آئے گی. اس کے بعد آپ وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے اس اسٹینڈرڈ کو اچیو کرنے کا طریقہ اس کو سمجھاتے ہیں کسی بھی پلیئر کو کہ دیکھو یہ اسٹینڈرڈ کو اگر اچیو کرنا ہے تو یہ اس کی پریکٹسز ہیں, یہ اس کے پروسیس ہیں, یہ اس کے پروسیجرز ہیں. اچھا, اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ پروفیشنل کرکٹ ہے, یہ کوئی اسکول اور بچوں کی کرکٹ نہیں ہے کہ جہاں میں کھڑا ہو کے بولوں کہ بھائی تو 6 راؤنڈ لگا. اگر اس نے اس لیول پہ کھیلنا ہے تو اس کو آپ نے پاور ڈیلیگیٹ کرنی ہے, اس نے وہ چیزیں اچیو کرنی ہے. اگر وہ اچیو نہیں کرے گا تو اس کا چانس کوئی نہیں ہے. اگر اس کو اچیو کرنے میں پرابلم آ رہی ہے, کوچز اویلیبل ہوتے ہیں, اسٹاف اویلیبل ہوتا ہے, ان کو ان کے پاس جانا چاہیے. تو ہم کوئی بھی چیز یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں چل سکتی میری نظر میں, یہ میری سوچ ہے, اور میں جو بھی کام کرتا ہوں میں اسی طریقے سے کرتا ہوں کہ ہم پاور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں دوسرے کو اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے اور یہ ایسے اچیو کر سکتے ہو, اور اگر جہاں پہ بھی تمہیں پرابلم ہو میں اویلیبل ہوں, آپ مجھ سے آگے بات کریں. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, اس میں ایک سیلف کانفیڈینس بھی بلٹ ہوتا ہے, وہ اس کو سمجھ میں بھی آتے ہیں, وہ اپنے مسلز بھی سمجھے گا, وہ اپنی فٹنس کے اسٹینڈرڈ کو بھی سمجھے گا. ہر کسی کی ریکوائرمنٹ علیحدہ ہے, ہر پلیئر کی, اس کو آپ ایک طریقے سے نہیں چلا سکتے. تو یہ چیزیں ہمارا اس پہ ڈسکشن چل رہا ہے, اور یقیناً ہمیں اس کو میرے حساب سے یہ ایک بہتر طریقہ ہے اس کو ڈیل کرنے کا کہ آپ پروفیشنل پلیئر کو اس کی پاور ڈیلیگیٹ کریں, اس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم یہ کام خود کرو, کیونکہ آپ ہر وقت کھڑے ہو کے نہیں کرا سکتے. ایک ٹرینر جو ہے وہ 16 پیروں کے گھروں پہ بھی نہیں جا سکتا اور کہیں بھی نہیں, ان کو ایک ذمہ داری کا احساس دلانا چاہیے ہم کو मैं मिसाल दे सकता हूँ, अंडर 19 का मैं जब मैनेजर था, मैंने कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं रखी थी, और वो उसकी इस वजह से नहीं रखी थी कि मैं उनको समझाया था कि देखो क्या क्या चीज़ें जो हैं जो तुम्हें तुम्हारे करियर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, अगर वो तुम चीज़ें करोगे तो उसकी सज़ा क्या होगी। वो अच्छी तरीके से उनको समझा दिया था, और उसके बाद मैं कोई 2 साल तक आप लोगों के सामने ही मैनेजर रहा हूँ, अंडर 19 का कोई आपको डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं आया होगा, कहीं कोई खबर नहीं आई होगी। तो आप बच्चों को जिम्मेदार बनाते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो आप बेटर रिजल्ट लेकर आते हैं, ना कि आप उनको ज़बरदस्ती वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ कराए। तो मेरा ये तजुर्बा जो मैं आपसे इसके लिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, और मैं लोगों को ज़िम्मेदार बनाता हूँ, लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, और फिटनेस के बारे में भी मेरी अपनी पर्सनल राय यही है कि हमें इनको एजुकेट करना चाहिए, ज़िम्मेदार बनाना चाहिए, बेटर रिजल्ट आए।
थैंक यू महमूद जी। अपना माइक ऑफ कर लें। शुएब जट
जी, आवाज आ रही है?
जी आ रही है।
अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, सबसे पहले वाली मुबारकबाद बहुत हो गई, सबसे आखिरी मुबारकबाद मेरी ले लें भाई। हमने सबने देखा कि आपने यूबीएल में जब काम किया तो उनका लाइफ स्टैंडर्ड बदलने की कोशिश की, मेहरान होटल से उनको 4-5 स्टार पे ले गए, ट्रेनों से जहाजों पे ले गए, ब्लेजर्स बनाना शुरू कर दिए, रिजल्ट भी आए, टीम जो है वो चैंपियन बनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में वो डिपार्टमेंट बंद हो गया। तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे रेवोल्यूशन लाना चाहें और खुदा ना खास्ता बाद में यहाँ भी ताले लग जाएं, ये तो खैर एक बात है। सवाल मेरा ये है कि ये जो कोचिज हैं, जो मौजूदा सिस्टम के कोचिज हैं, चाहे अकेडमी के कोचिज हों चाहे दीगर कोचिज हों, जिनको आप इवेलुएट भी करने जा रहे हैं, यकीनी तौर पर ये डिलीवर नहीं कर पाए, तभी तो इतने सारे मसाइल जो हैं वो सामने हैं। तो मुझे ब्यूरोक्रेसी वाला जवाब ना दीजिएगा, क्लियर बताइएगा कि क्या कुछ कोचिज घर जा रहे हैं आप जब संभालेंगे और उनको इवेलुएट करेंगे, अगर वो इवेलुएशन पे पूरा नहीं उतरते तो क्या वो घर जाएंगे? दूसरा, ये जो कराची की हनीफ मोहम्मद अकेडमी है, ये भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दर्जा हासिल करेगी या बस ये ऐसे ही नाम की अकेडमी रहेगी जिसमें जो है वो स्विमिंग पूल भी टूटा फूटा है, एक हॉस्टल से ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसके जिम जो है उसमें भी जंग लगा हुआ है, कोई मतलब डेवलपमेंट यहाँ नजर नहीं आता?
शेब, मैं ब्यूरोक्रेट वाला जवाब भी नहीं दूंगा ना पॉलिटिशियन वाला जवाब दूंगा, मेरा सिर्फ सिंपल सी एक चीज है, जिनके ऊपर इल्जाम है, इंटेग्रिटी के इश्यूज है, वो तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ पे बहुत सख्ती से वो करूँगा, इंटेग्रिटी इश्यूज वाले नहीं रुकेंगे। बाकी काम में जिसको प्रॉब्लम है, मेरी जॉब ही यही है कि उनकी हेल्प करूँ और उनको उस स्टैंडर्ड पे लेकर आऊँ। तो मैं निकालने से ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप मोबिलाइज करें और एजुकेट करें लोगों को कि वो स्टैंडर्ड जो आप अचीव करना चाहते हो आप उनके साथ मिलके करें। तो मेरा कभी भी ये नहीं है कि मैं निकालने के बारे में सोच रहा हूँ कि इन्होंने रिजल्ट नहीं दिए। रिजल्ट ना देने को यही असेसमेंट होगी, रिजल्ट अब तक आए क्यों नहीं, अगर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या दूसरे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट अब तक आए क्यों नहीं, तो इसी तरह की असेसमेंट होगी। और हमारा ये काम है कि उनकी हेल्प आउट करें, उनको उस स्टैंडर्ड पे लेकर आए, ना कि उनको निकालने के बारे में सोचें। निकालने का मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि जो इंटेग्रिटी इशूज जिसके होंगे और हमें पता चलेगा, वो यकीनन मेरे साथ तो वो काम नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊँ जो जितनी भी है, चाहे वो मुल्तान की हो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसको हमने 3 चीजों में बांटना है। ये मेरे प्लान्स है, अभी तो मैंने कल ही की बात है कि सब कुछ हुआ, अभी जो मेरे प्लान्स है वो ये है कि देखें, इसको 3 हिस्सों में बांट लिया है। हर एकेडमी में ना 3 तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक है क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटफील्ड, पिचेस, ठीक है, इक्विपमेंट उसके साथ जो उसको पिचेस और आउटफील्ड। दूसरा हो गया आपका ये जो आपका जिम फिटनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है। तीसरा जो उसका हो गया वो आपका ये जो वहाँ पे ठहरने का और सारा जो बोर्डिंग लॉजिंग, इनको 3 डिफरेंट चीज़ों में हमने बांट दिया। और इसी तरीके से हम इसको रिव्यू करेंगे एक एक चीज़ को और उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। जो चीज़ देखें जो मुल्तान की एकेडमी में होगी वो कराची में भी उसी तरह की होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड हमको सेट करने चाहिए। इसको चलाने की SOPs बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर डिवेलप करने की बात करते हैं, विजन देते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर डिवेलप करेंगे, तो उसके लिए उसके लवाजमात हैं, उसके लिए उस तरह के कोचेज चाहिए, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस तरह के एसओपी चाहिए, उस तरह के काम करने वाले लोग और काम करना और रिव्यू सिस्टम और ये सारी चीजें उसकी, उसके लिए सब चीजें इम्पोर्टेंट है। तो ये कोई कराची के सिर्फ जगह की बात नहीं है, कराची के सेंटर की बात नहीं है, बिल्कुल हमारा ये इरादा है कि एक स्टैंडर्डाइज किया जाए सारी जगहों को, और अगर आपने उससे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने और रिजल्ट लेने तो जैसे मैंने कहा ये सारी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होपफुली आपको चेंज नजर आएगी जब इंशाल्लाह।
थैंक यू वेरी मच शोएब, थैंक यू वेरी मच नदीम खान, और सब साथियों का बहुत शुक्रिया कि आपने मैं ज्वाइन किया, और आई थिंक काफ़ी इन डेप्थ और डिटेल्ड हमारे सेशन रहा जिसमें नदीम भाई ने सारी डिटेल्ड आंसर्स दिए। थैंक यू वेरी मच, आई बिलीव सबके सवाल हो चुके हैं, सो आप बहुत शुक्रिया। बहुत थोड़ी देर में हम इंशाल्लाह लिंक शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी और ईमेल पे भी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।